सुबह का वक्त, आस्तिक और अरुणिमा का कमरा। अरुणिमा अभी अभी सोकर उठी थी और उसने जब अपने सामने आस्तिक को देखा तो वो हैरान हो गई। आस्तिक ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो लगभग तैयार हो चुका था। अरुणिमा ने घड़ी की तरफ देखा तो अभी बस सुबह के 8 बज रहे थे। वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? अरुणिमा ने लेस वाली नाइटी पहन रखी थी। उसने श्रग पहनते हुए कहा, आस्तिक, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आस्तिक आईने के सामने खड़ा था और अभी अभी उसने अपनी वॉच पहनी ही थी। वो मुस्कुराते हुए अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम उठ गई? अरे, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बेड पर उसके पास बैठे हुए कहता है, क्योंकि तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। वैसे मन तो कर रहा था कि प्रिंस की तरह तुम्हें किस करके उठाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। अरुणिमा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आस्तिक, 2 दिन हो गए हमें वापस आए हुए, पर तुम 1 मिनट भी घर पर चैन से नहीं रहते हो। रात में पता नहीं कब घर आते हो और सुबह पता नहीं कब निकल जाते हो। सब ठीक तो है ना? उस फैक्ट्री के हादसे के बाद तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो। वैसे कुछ पता चला इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? आस्तिक के चेहरे पर निराशा थी। उसने नामी सर हिलाते हुए कहा, नहीं अरुणिमा, कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन से मैं इसी में लगा पड़ा हूँ, लेकिन फैक्ट्री इतनी बुरी तरह से जल गई है कि एक सुराग तक नहीं मिल रहा है। ऊपर से वहाँ पर मरे हुए और घायल लोगों के बारे में सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो घायल हैं उन्हें कंपनी रिलीफ से फंड प्रोवाइड करवाया है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके परिवार के लोगों के चेहरे को देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। उन लोगों ने अपने परिवार का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य खोया है, और जब वो लोग मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मेरी एक माफ़ी उनके जख्मों की भरपाई नहीं कर सकती है। उस हादसे में करीब 10 लोग मारे गए हैं और मैं उन 10 के परिवार से पर्सनली जाकर मिल रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सब करके भी उन लोगों ने जो खोया है, मैं उन्हें वो कभी वापस नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं खुद उनके पास जाकर उनके हालातों को समझ रहा हूँ। वो परिवार जिन्होंने अपना एक बेटा खोया है, अपना पिता खोया है, अपना भाई खोया है या कोई अपना खोया है, उनका दर्द कैसा है और वो उनकी आंखों में दिखता है, और मैं तुम्हें वो शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। 9 लोगों के परिवार से तो मैं मिल चुका हूँ, आज 10वें एम्प्लॉय के परिवार के पास जा रहा हूँ। वो वर्कर जो इस हादसे में मर गया था, उसके परिवार का वो निकलौता आदमी था जो कमाता था। वो पूरा परिवार उसके जाने से टूट गया है, बिखर गया है, इसीलिए वो लोग आज ही ये शहर छोड़ कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं। इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए इतनी सुबह सुबह जा रहा हूँ, ताकि उनकी थोड़ी मदद कर सकूँ। मुझे पता है वो खुददार होंगे, मुझसे मदद नहीं लेंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना अरुणिमा। आस्तिक ने बहुत बहुत भरे शब्दों से ये सब कहा था और अरुणिमा उसे हैरानी से देखती रह जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी की हुई आस्तिक से कहती है, आस्तिक, ये क्या कह रहे हो तुम? आस्तिक एकदम से अरुणिमा की तरफ देखते हुए बोला, क्या? मैं क्या बोला? अरुणिमा ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है तुम्हें? जो तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है? आस्तिक उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरुणिमा ने हैरानी जताते हुए कहा, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सब सुन रही हूँ। तुम किसी के लिए फिक्र जता रहे हो और किसी के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो। तुम, मतलब आस्तिक रायचंद, जिसे लोग बीस्ट के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि बीस्ट के दिल में ना तो किसी के लिए दया है और ना ही किसी के लिए कोई फीलिंग्स है, वो इंसान आज किसी के चले जाने पर अफसोस जता रहा है। उसकी बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो धीरे से अरुणिमा के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अगर पहले वाला आस्तिक रायचंद होता तो उसे इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उन लोगों के मुंह पर पैसे मारकर ये कहता कि मामला यहीं रफा दफा कर दे। लेकिन तब मैं और अब मैं, फर्क है अरुणिमा, अब वाला आस्तिक कुछ और है, और इस कौर की वजह तुम हो, मुझे बदलने की वजह तुम हो। पहले मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में ही कोई ऐसा नहीं था जिसके जाने से मुझे फर्क पड़े, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है और मुझे डर लगता है। हाँ अरुणिमा, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। कभी कभी अगर सोने बैठता हूँ कि ऐसा दिन आ गया जब तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा दिमाग इस सोच को भी एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ, और जब मैंने तुम्हारे लिए इस एहसास को महसूस किया तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी फैक्ट्री में जो लोगों की जान गई है उनके परिवार को कैसा लग रहा होगा। मैं उनका दर्द इसीलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो आस्तिक के लिए खुश थी। आखिरकार आस्तिक ने दूसरों के लिए दर्द महसूस करना शुरू कर दिया था, ये उसके बदलने की पहली प्रक्रिया थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आस्तिक, और तुम्हारा ये बदलाव मुझे बहुत पसंद आया। आस्तिक ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया, लेकिन फिर उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, हाँ मैं बदला जरूर हूँ, लेकिन ये बदलाव सिर्फ मेरे अच्छे रूप को सामने रखता है, लेकिन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बीस्ट को खत्म कर दिया है। वो बीस्ट अभी भी मेरे अंदर जिंदा है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा बीस्ट मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ, वैसे मैं अपने उस रूप को भी खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि जब तक जरूरत ना पड़े तब तक मैं बीस्ट को सामने नहीं आने दूंगा। अरुणिमा की मुस्कान थोड़ी फीकी जरूर हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि आस्तिक जो कह रहा है वो सच है। उसका वो दूसरा रूप जिसे वो कभी नहीं देखना चाहती थी, जो बहुत ही भयंकर और डरावना है, लेकिन वो आस्तिक के जीवन का एक पहलू भी है जिसे वो खुद से अलग नहीं कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आस्तिक आगे बढ़कर अरुणिमा के माथे को चूम लेता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आस्तिक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अरुणिमा ने पूछा, तो आस्तिक उसे देखते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा ना मिस्टर रायचंद, तो उसके बाद तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ जितना चाहे उतना आराम कर लो। अरुणिमा का गाल एकदम लाल हो जाता है और उसने आस्तिक के कंधे पर मारते हुए कहा, हटो यहाँ से, तुम्हारे दिमाग में हर समय यही चलता रहता है क्या? तुम्हारा बस चले तो मुझे बेड से उठने ही ना दो। आस्तिक हंसता हुआ खड़ा होता है और ड्रेसिंग के पास जाते हुए कहता है, वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन इस पर हम बाद में काम करेंगे, फिलहाल के लिए तो मुझे निकलना है। वापस आने के बाद ये बेड वाला बात एक बार याद दिलाना मुझे। वो क्या है ना, ब्यूटीफुल से चेहरे के अलावा मुझे इन दिनों कुछ याद नहीं रहता है।
आस्तिक ने अरुणिमा को परेशान करने भरे अंदाज में उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरुणिमा ने बेड पर रखा हुआ तकिया उठाया और आस्तिक की तरफ फेंकते हुए कहा, जाओ यहाँ से, अभी तो तकिया फेंक रही हूँ, बाद में ये फूलदान फेंक कर मारूंगी, ऐसा सोचना भी मत वरना तुम विधवा हो जाओगी, आस्तिक ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो अरुणिमा उससे नाराज होते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, खबरदार आस्तिक, बात कही तो। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम आराम करो और जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक बाहर जाने की सोचना भी मत, मैंने सिक्योरिटी को कह दिया है, वो तुम पर नजर रखेंगे, आस्तिक ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चला गया। अरुणिमा उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, नहीं जाऊंगी बाहर, यहीं घर में कैद रहूंगी, तुम जल्दी आओ। आस्तिक मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। अरुणिमा अंगड़ाई लेते हुए उठती है और उसके बाद उसने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों में भारीपन महसूस किया वो अपने पैर देखने लगती है। उसके पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग आ रखी थी। उसे पता चल गया था कि ये स्वेलिंग प्रेगनेंसी की वजह से है। उसने अपने पेट में अपना हाथ रखा, उसका टमी भी हल्का सा बाहर निकल आया था और अरुणिमा को पता था कि वो अब देर नहीं कर सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अब नजर आने लगे हैं। वैसे भी आस्तिक का काम लगभग खत्म हो चुका है। उसकी फैक्ट्री में जो लोग मारे गए हैं आस्तिक उनके परिवार से मिलने गया हुआ था और आज आखिरी परिवार से मिलकर उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरुणिमा उसे सच्चाई बता देगी। वो वॉशरूम चली जाती है और तैयार होकर हाल में आती है। वो बस आस्तिक के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी हाल में रखा हुआ लैंडलाइन बजने लगता है। अरुणिमा ने फोन रिसीव किया और कान में लगाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा चाहने वाला, सामने से आवाज आती है तो अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है। उसने गुस्से में कहा, कौन बोल रहा है? ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, मैसेज रायचंद, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो फालतू की बातें छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो।